Sekarang kena masuk lagi dia kena masuk lagi. La haula wala quwwata illa billah aliyyun azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajimir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi alillah. La sayyima baqiyatullah walanatullahi ala adahim adillah min yawmin haza la liqa'a illa amma ba'd faqad qala Allah fi kitabin hakim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun durud qadam Allahumma salli ala la Muhammadin wa ala Muhammad. عزیزان محترم, یہ سورہ بقرہ کی سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ہم 21 سے انشاءاللہ 29 آیت کی آج تفسیر کریں گے. پہلی آیت, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے انسانوں سے کہا ہے کہ لوگوں, عابد ربکم الذی, اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کرا, وہ جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کرا. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. جو انسان کی جو بیسک چیز کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرا کہ تم کو میں نے خلق کیا ہے, تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تم کو خلق کرا. خلقکم والذین من قبلکم, نہ ہی میں نے تم کو خلق کرا ہے بلکہ تمہارے پہلے آبا و اجداد ہیں, ان کو بھی میں نے خلق کرا ہے. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ عبادت اس لیے کرانا چاہ رہا ہے کہ تم پرہیزگار بنو. کیونکہ جو پرانا سسٹم یہ تھا کہ قرآن نے بار بار کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جس کو کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے کرتے پایا, تو اسی طریق سے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی خلق کیا اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے ہی خلق کیا تھا. الذی جعلکم ارض فراشا و سماء بناها و انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا اللہ اندازہ ان کنتم تعملون. درود پڑھ دیں. خدا نے کہا میں کون خدا ہوں؟ الذی جعلکم ارض فراشا, میں وہی ہوں جس نے کہ زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا. والسماء بناها, اور آسمان کو چھت بنایا. وہ انزلنا من السماء ماء, پھر میں نے آسمان سے میں برسایا, اور میں نے اس سے طرح طرح کے میوے دیے تاکہ تم ان کو کھاؤ, رزق بنایا تمہاری. فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم, اس میں سے پھر ہم نے میوے نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعل اللہ اندادا وانتم تعلمون, تو تم خدا کے سوا اور کو کیوں ہمسر بناتے ہو؟ اور یہ بات تم جانتے بھی ہو, یہ بات تم جانتے بھی ہو. اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. الذی جعلکم ارض فراشا, ٹھہرنے کی جگہ بنایا زمین کو اللہ نے کہا. فراشا مطلب ٹھہرنے کی جگہ. تو اس کے لیے چوتھے امام کی حدیث ہے, اللهم صل علی محمد و آل محمد, کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے تمہاری فطرت اور تمہارے بدن کو دیکھ کے بنایا ہے. اس نے نہ تو اس کو بہت گرم بنایا ہے کہ تم اس میں بھن جاؤ, نہ اتنا سرد بنایا کہ تم اس میں جم جاؤ, نہ اس میں اتنی زیادہ خوشبو پیدا کری ہے کہ تمہارے دماغ کو تکلیف ہونے لگے, نہ اتنی بدبو ہے کہ تمہاری موت آ جائے, نہ ہی اس کو اتنی نرم بنایا ہے کہ تم اس میں ڈوب جاؤ, نہ ہی اس کو اتنی سخت بنایا کہ تم اس میں مکان نہ بنا پاؤ, نہ ہی تم مردوں کو دفن کر پاؤ. اس لیے اللہ نے کہا کہ فراشوں بنایا, उसको ठहरने की जगह बनाया है। वह समाय बिना उस आसमान को छत बनाया है, समाय बिना, इसकी तफसीर बड़ी डिटेल है। आसमान को छत कैसे अल्लाह ने बनाया, तो समा बिना से तफसीर यह है कि आसमान के ऊपर आज रिसेंट जो साइंस बताती है कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की एयर की कवरिंग है, किसी ने कहा मोर देन 600 माइल्स की एयर की कवरिंग है, उसके तीन अलग अलग जोन है उन एयर्स के। जब वो एयर की कवरिंग इतनी स्ट्रांग है कि कई मीटर की अगर आप स्टील डालें, आप हंड्रेड्स ऑफ मीटर स्टील, वो इतनी मजबूत नहीं होगी जितनी कि ये एयर कवरिंग मजबूत है। मजबूत छत बना वो करती क्या है वो छत, वो छत की ब्यूटी है कि वो छत सूरज की रोशनी को आने देती है। अगर आप स्टील डाल लेते तो रोशनी ही नहीं आती, सूरज की रोशनी को आने देती है। लेकिन जो मीटियोर्स जो आते हैं, जो लगातार जो हमले होते हैं, वो मीटियोर्स को रोकती रहती है। अगर वो छत नहीं हो आसमान की तो मीटियोर्स इस जमीन को ख़त्म कर दे। एक दुरूद पढ़ दें, छठे इमाम फरमाते हैं कि मुफज्जल देखो तुम आसमान की तरफ कि अल्लाह ने कैसा उसको आसमानी बनाया है, नीला बनाया है। वो तुम्हारी आंखों के लिए सबसे मौजू है कि उससे आंखों को ताकत मिलती है। तो एक एक चीज अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो बनाई है आसमान की छत ताकि ये मीटियोर्स नहीं आए, ये अल्लाह की हिकमत है, कारीगरी है। वो अनज़ल्ला मिनस समाई मा, फिर आसमान से बारिश करी, उसके लिए जो थे इमाम की हदीस है, अल्लाह ने आसमान से पानी को पहाड़ की चोटियों पर भी उतारा और खाइयों में भी उतारा और टीलों पर भी उतारा, और फिर अल्लाह बारिश धीरे धीरे करता है ताकि एक अलग अलग बारिश का कतरा हो जाए, अलग अलग। कभी कभी बारिश हल्की हल्की होती है धीमे धीमे, और कभी थोड़ी तेज़ी से बारिश होती है ताकि वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से समा जाए। और अल्लाह पानी को इस तरीके से तेज़ी से नहीं भेजता है कि ज़मीन और दरख्त और खेतियाँ सब बर्बाद हो जाएं। एक दुरूद पढ़ दें, अखरजना भी मिनल, दुरूद पढ़ दें, अखरजना भी मिनल समरात रिस्कल लकुम, फिर उसमें से वो उस बारिश से समरात निकालता है, मेवे निकालता है। अगर बस वही परवरदिगार है जो कि आसमान से पानी बरसा के मेवे निकालता है, ये वही खुदा है जो कि आसमान से पानी बरसा कर मेवे निकाल के अलग अलग रस पैदा करता है, कभी अंगूर का रस पैदा करता है, कभी सेब का रस पैदा करता है, कभी अनार का रस पैदा करता है। आप सोचें ज़रा, गौर करें, आप जंगल चले जाएं, उस जंगल में आपको कई जंगली झाड़ मिल जाएंगे, जंगल में आपको जंगली अनार भी मिल जाएंगे, जंगल में आपको जंगली, आप सोचें कि आसमान से बारिश खुदा ने करी, किसी ने नहीं करी, ज़मीन खुदा ने बनाई, आसमान खुदा ने बनाया, आसमान से बारिश खुदा ने करी, खुदा ने ही उन झाड़ों को उगाया, और खुदा ने ही उसके मेवे उगाए, और खुदा ने ही उसका रस बनाया। आपने करा क्या है? ये खुदा की कारीगरी है जो खुदा बताना चाहता है तो कि देखो मैं ही आसमान से मैं बनाकर अंगूर का रस भी मैं ही पैदा करता हूँ। दुरूद पढ़ता है, वह इन कुन तो फिर भी मिम्मा नज़लना अला अब्दीना फ़त्तु भी सूरत भी मिसली वदऊ शहदा कुम मिंदूनी लाए इन कुन तुम सादकीन, अगर तुमको शक है जो हमने अपने इस बंदे पर कुरान नाजिल करा है, तो एक सूरत इस तरह की ले आओ और खुदा के सिवा जितने मददगार है सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो। एक तो अल्लाह ने मौजा दिया कि देखो मैं बारिश करता हूँ, नई बारिश के पानी से अंगूर का रस बनाता हूँ, नई बारिश का पानी के अंगूर का रस मैं बनाता हूँ। अब सुन लो मेरी बात, ये मेरी कारीगरी के मैं करता हूँ। अब एक बात और सुन लो कि अगर तुमको शक है ये जो हमने जो कलाम ने नाजिल करा हमारे अब्द पर, तो तुम एक सूरत तुम खुद ऐसी बना लो और खुदा का सिवा जिनको सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो, अगर तुम सच्चे हो तो। और ये जो चैलेंज जो जब से चल रहा है आज तक चल रहा है, ये चैलेंज आज तक अल्लाह का चैलेंज, कयामत तक का चैलेंज है। अरब जो लोग थे लिटरली एक्सपर्ट थे, अलगा टेक्नीशियन नहीं थे वो, लेकिन लिटरली एक्सपर्ट थे, अरब के अरबी के एक्सपर्ट थे। तो जब एक सूरा मतलब सूरे कोफर की जब दो जो छोटा सा सूरा है कुरान हकीम का, जब ये तो खैर अल्लाह सुब्हान अल्लाह पहले एक सूरत का कहा है, फिर बाद में अल्लाह ने कहा कि तुम 10 आयतें ले आओ, अल्लाह का चैलेंज घटता गया, फिर कहा चलो एक कोथर की मिसल ले आओ, वो भी नहीं ले पाए। उसकी वजह क्या था कि वो खुद ही माहिर थे लैंग्वेज के। जब इन्होंने कोसर के मुकाबले में खुद अपने कलाम लगाए काबे की दीवार पे, तो खुद ही शर्मिंदा हो गए कि ये फजाहत बलागत तो हम ला ही नहीं पाए, खुद ही नहीं उतार लिए, कहा ये फजाहत बलागत कुरान की हमारे पास नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ये जो चैलेंज है ये अलिफ बात आसा का चैलेंज है, ये कोई नई बात नहीं लाना, यही अलिफ बात आसा है, यही अल्फाबेट्स हैं, इसी को तुम लिख लो, और तुम सच्चे तो तुम सब के सब खुदा के लिए सबको बुला लो, जिनों को लिया इंसान सब बैठ जाओ, कॉन्फ्रेंस कर लो और मिलके लिख लो। वो चैलेंज आज तक मौजूद है। ये रसूल अकरम ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा मौजा कुरान हकीम है जो मैं लाया हूँ ता कयामत तक का, फसाहत बलागत रूहानियत अदल सोशल जस्टिस मॉरल्स साइंस हर चीज़ की जो एक मजमुआ जो कुरान हकीम बनता है वो ऐसा मजमुआ है कि इंसान खुद परेशान हो जाता है कि ये वाकदर हकीकतन खुदा का कलाम है, क्योंकि हर चीज़ एक कलाम में होना, इसीलिए तो आज तक ये चैलेंज पूरा नहीं हो पाया है। जब ये कुरान नाजिल हुआ था तो अरबों ने चैलेंज को कम्पीट करने की कोशिश करी थी, बाद में खुद थक गए। जब खुद थक गए तो कहा कि इस चैलेंज को तो हम पूरा नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, हम तलवार उठा लेते हैं। खूरेजी भी इसलिए उतरा है कि जब ये लिटरली चैलेंज एक्सेप्ट न कर पाए तो खूरेजी भी उतरा है, दुरूद पड़ गए। فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي درود پڑھتے ہیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهُ النَّاسُ حِجَارَةٌ وَأُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگر تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے पहले तो कहा कि तुम अगर ऐसा ना कर सकोगे, फिर कहा हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है। फत्तकुन नार अल्लती उस आग से डरो, वकूद और नास वही जा रहा है जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो और जो काफिरों के लिए तैयार की गई, उद्दत लिल काफिरीन जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। यही कुरान की फसाद और बलागत है कि एक तरफ तो कुरान अभी इसी बात कर रहा था कि मिसल ले आओ, फिर कुरान पलटा तो कैसी बात कर दी, सोच देखना बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा ना कर सको फिर क्या क्या कभी ऐसा ना कर पाओगे। जब ये अल्लाह कहते थे ना कभी ऐसा ना कर पाओगे, ये खालिक का कलाम है, ये सिर्फ खालिक ही इसी बात कह सकता कि तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। इंसान का कलाम होता तो किस इंसान ने मजा लेके कह दे ये तुम कभी ऐसा ना कर पाओगे। खुदा ने वो लम तफलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहुन नास उद्दत लिल काफिरीन उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वो जो काफिरों ने तैयार की गई है। फिर एकदम से कुरान पलटता है, ये खुदा का जो कलाम ना पलटता है, यही तो ब्यूटी है कुरान की। इसमें क्या आरिफ को मजा आता है, दुरूद पढ़ता वो बशर लजीना आमन अमिल सहालत अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतुल अनहार कुल्लुमा रुजीक मिनहा मिन समरतिन रिस्कन कालू हाजल लजी रुजीक ना मिन कबलु व उतू भी मुताशाबिहा व लहुम फीहा अजवाज मुतहरम व हुम फीहा खालिदून। दुरूद पढ़ रहा
है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो खुदा उस आग की बात कर रहा था, उस दोज़ख की बात कर रहा था, अब खुदा ने एकदम अलग कलाम करा है। ये जो आयत आई ना ये मैं पढ़ रहा हूँ वो बशर लजी नाम सालहत, इब्न अब्बास कहते हैं कि ये जो आयत आई इमाम जनाब अमीर और उनके शियों के लिए आयत आई है, ये जो आयत आई है कि खुशखबरी सुना दो वो बशर लजी नाम सालहत है, खुशखबरी सुना दो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करे, क्यों उनके लिए बागा बहिश्त है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यही तो ब्यूटी कुरान की। अभी तो आग की बात हो रही थी, अल्लाह ने एकदम बात ही पलट दी। किसके लिए? जो लोग ईमान लाए, नेक अमल कर, उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उनको कोई मेवा दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि इस तरह का मेवा तो हमको पहले भी दे चुका है, दिया गया है, और एक दूसरे साथ मिलते हुए मिलते जुलते मेवे दिए जाएंगे, और उनके लिए वहां पाक बीबियां हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्या आयत है? अगर यह आयत अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो एक खुदा की तजल्ली दिल में पैदा होगी, एक तजल्ली पैदा होगी। जब भी वहां कोई मेवा दिया जाएगा उनको तो कहेंगे कि यह मेवा तो हमको पहले मिल चुका है, और वो एक दूसरे साथ मिलते जुलते मेवे दिए जाएंगे। इसकी तफसीर यह है कि जब जन्नत में मोमिनीन जाएंगे इंशाल्लाह तो जो फल दिए जाएंगे तो फल दुनिया की तरह के फल दिखेंगे, वो जो दिखते ना अंगूर और अनार, लेकिन जो उसका जो जायका होगा वो बहुत ही अलग होगा, और हर वक्त जायका अलग होगा, हर वक्त अलग जायका होगा। ये दुनिया के जो फल होते हैं ना, कोई आपको पके हुए मिलते हैं, कोई कच्चे रहते हैं, कोई अच्छे नहीं रहते हैं, ये दुनिया के फल हैं। इसमें भी आजमाइश है बंदों की, ताकि अल्लाह आजमाए कि तुम मेरा अभी भी शाकिर होके नहीं हो, मुझे शक तो नहीं करने बैठ गए कि ये कैसा खाली के कोई खट्टे फल बनाया कोई मीठे बनाया। अल्लाह ने कहा नहीं, ये आजमाइश है, फिर वहाँ पर परफेक्शन है कि हर बार आप खाओगे तो अलग मज़ा है, वो कोई हर बार मज़ा बेहतरीन मज़ा है, दुनिया की तरह नहीं है। और क्या होगा वहाँ? और वहाँ पर उनके लिए पाक बीबियाँ होंगी, पाक बीबियाँ होंगी। पाक से मुराद ये कि जिस्मानी भी पाक होंगी, दुनिया की बीवियों में निजाजत होती है जिस्मानी, और रूहानी भी पाक होंगी वो। तो उसके लिए एक हदीस दुरूद पढ़ रहे, रसूल सलम कहते हैं कि अगर आसमान की अगर हूर ज़मीन पे आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया, उसकी मुश्क की खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए, और उसकी रोशनी से सूरज और चाँद की रोशनी नीचे दिखने लगे। ये उस हूर की खूबसूरती है। और दुनिया के बारे में क्या कहा है रसूल अकरम ने? कि घूड़े पे उगने वाली हरी सब्जी से परहेज करो, घूड़े पे उगने वाली हरी सब्जी से, घूड़े पे घूड़ा घूड़ा कचरा, घूड़ा कचरा, कूड़े पे उगने वाली हरी सब्जी से परहेज करो। तो लोगों ने कहा रसूल अकरम इससे क्या मुराद है? क्या इससे मुराद ये है कि वो खूबसूरत औरत जो उस घर में से परवरिश पाली हो जहाँ दीन ना हो, गंदी गलीज फैमिली की जो औरत होती तो खूबसूरत तो इतनी है, लेकिन उसकी जो परवरिश हुई वो खराब घराने में हुई है। आज के लिए दुनिया ऐसी हो गई है, आज के लिए दुनिया ऐसी, रसूल अकरम ने मना करा था, लेकिन दुनिया आजकल खूबसूरत हो जाती है, इन्हें देखती कि इस लड़की की परवरिश किस घर में हुई है। एक दुरूद पढ़ रहे अल्लाह ताला ने आगे मिसाल दिए, इन्नल्लाह ला यस्ती अन यद्रबु मसलम मा बऊज़ु फमा फौक़िहा फअम्मा अल्लज़ीना आमनु फयअलमु अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रु फयक़ूलु माज़ा अरादल्लाह बिहाज़ा मसला युज़ल्लि बिही कसीरन व यहदी कसीरा वमा युज़ल्लि बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। दुरूद पढ़ दें, बेशक खुदा मच्छर या उससे बड़ी चीज की मिसाल बयान करने में शर्माता नहीं है। जो लोग ईमान रखते हैं वो जानते हैं कि यह खुदा की तरफ से हक है, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि खुदा की इस मिसाल से बयान करने से क्या मुराद है, क्या मुराद है। इसी तरह खुदा बहुतों को गुमराह कर देता है और बहुतों को हिदायत देता है, और गुमराह भी उनको करता है जो फासिकीन है। दुरूद पढ़ दे, खालिक कायनात कहता है कि मेरे लिए मच्छर और किसी दूसरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। देखें आप, देखें एक जो मुनाफिक होता है ना, जो मच्छर को देखता है ना, मुनाफिक और मोमिन में भी फ़र्क होता है, मच्छर देखता है ना काटता है, अरे ये क्या दुनिया है, ये सब तकलीफ़ें, कहाँ जन्नत है भाई, مومن الگ سوچتا ہے, مومن سوچتا ہے ارے یہ وہی مچھر ہے جس کی خدا نے قرآن بیان کرا ہے, یہ وہی مچھر ہے جس نے اسی مچھر کو جس نے بنایا اسی نے اور بھی بنائی ہے, اور وہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. منافق اور خدا کے گھر میں شک کرنے لگتا ہے, دنیا کی حیثیت جہنم ہے, یہ ان پلان دنیا بنا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے سوائے پریشانی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. مومن انٹیلیجنٹ ہوتا کہتا ہے, اسی لیے اللہ نے کہا کہ مومن کو جب مثال اچھے کی بیان کی جائے تو وہ کہتا ہے ہاں خدا کی طرف سے ہے, اور منافق اور پریشان ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ کنفیوژن جو ہوتا ہے نا, یہ اللہ کہتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, وما یضل بھی الا الفاسقین, گمراہ فاسق کو کرتا ہو. تو ایک درود پڑھ دیں آپ, محمد چھٹے امام سے ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مچھر کی جو مثال دی ہے, کہا کہ مچھر کے اندر وہ سب چیزیں موجود ہیں جو کہ ہاتھی میں موجود ہیں, بلکہ اللہ نے اس کو دو ایکسٹرا اور ہاتھ دیے ہیں, اور اس کے اندر اتنی اللہ نے نزاکت رکھی ہے, اس میں اللہ نے اتنی نزاکت رکھی ہے. یہ مومن دیکھتا ہے, مومن دیکھتا ہے. منافق کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. مولا متقیان نے کیا فرمایا, درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ دنیا کے تمام پرندے اور جنگلی جانور اور جو دودھ دینے والے جانور ہیں اور بے وقوف لوگ اور سمجھدار لوگ سب کے سب مل کے ایک مچھر کو بنانے کی کوشش کریں, یا وہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ پریشان ہو جائیں گے. نہ تو وہ سمجھ پائیں گے کہ کیسا بنا ہے, نہ اس کو بنا پائیں گے, بلکہ پریشان ہو جائیں گے, اور ان کی عقلیں ان کی طاقت کچھ کام نہیں کریں گی, وہ تھک جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں ناکامیاب ہو گئے, اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس کو نہیں بنا سکتے, اور بعد میں یہ بھی سمجھ لیں گے وہ اتنے کمزور ہیں کہ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے, اس مچھر کو ختم بھی نہیں کر سکتے, جو کہ ہے نا نیوٹن کا لا, کہ نہ تو تم کچھ بنا سکتے ہو نہ تم کچھ ختم کر سکتے ہو. پورا کائنات مل کے ایک مچھر بنا لو تو ختم بھی نہیں کر سکتی, ہم اتنے کمزور ہیں. اب وہ جو منافع جو مچھر کو دیکھ کے سوچتا ہے یہ کون سی جنت اور کیا, وہ جاہل ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مچھر کیا چیز ہے, پورے کائنات مل کے اس مچھر کو بنانا چھوڑو ختم تک نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر تم جنت میں شک کرتے ہو, درود پڑھ دو اب الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یصلوا ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون, درود پڑھ دیں جو لوگ خدا کے اقرار کو مضبوط رکھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور جو خدا نے چیزیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں, یہی لوگ اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں, اور جو اللہ نے جو رشتے قائم رکھے تھے ان کو کاٹ دیتے ہیں, قطع کر دیتے ہیں, وہ زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ آیت سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو تم نے عہد کیا تھا, اسے جو دین اسلام کا جو عہد کیا تھا, رشتوں کو قائم رکھنے کی جو تم نے بات کری, تم جو لوگ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو, وہ رشتے کون کون سے ہیں, رشتے کون کون سے ہیں؟ پہلے لوگ سوچتے ہیں رشتے صرف فیملی رشتے ہیں, فیملی رشتے ہیں, ماں باپ کے بھائی بہن کے, نہیں یہی رشتے نہیں ہیں, بلکہ رشتے آپ کے اللہ کے نبی سے, رشتہ آپ کا ائمہ طاہرین سے, رشتہ آپ کا اہل بیت سے, رشتہ آپ کا دوسرے مومنین سے, سوشل سرکل سے, سارے آپ کے رشتے اللہ نے کہا ان کو آپ بنا کے رکھیں. اگر آپ ان رشتوں کو کاٹیں گے تو آپ زمین میں فساد پیدا کرنا شروع کر دیں گے, وہ نقصان ہوگا. آج جو زمین میں جو فساد ہو رہا ہے رشتوں کو کاٹ کر, اہل بیت سے منقطع ہو کر, اہل بیت کی ہدایت نہ لے کے, یا اپنے گھر والوں سے جھگڑ کر, یا مسجدوں میں نہ جانے سے اور مومنوں سے دور ہٹنے سے, یہ تو فساد ہے دنیا کا. ये सारे फसादात या घर के अंदर सेपरेट होगा एक से, जिनके हुकूक थे उनको आपने नहीं दिए, माँ बाप मामू चचा, ये सारे अगर आप आपने रिश्ते कायम न रखे तो आप जमीन में फसाद कर देंगे। और ये अल्लाह सुभान व तआला ने इस आयत में बड़ा डिटेल समझाया। दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो आयतें हो रहे हैं आगा, कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातुम फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुरजऊन। तुम खुदा से क्यों कुफ्र कर सकते हो कि जब तुम पहले मुर्दा थे तो खुदा ने तुमको जिंदा करा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा और तुम उसी की तरफ लौट के जाओगे। दुनिया की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना, साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई, वो लाइफ क्या है। अल्लाह इसी को चैलेंज कर रहा है, लाइफ की मिस्ट्री। तुम खुदा से क्यों कुफ्र करोगे कि तो तुम मुर्दा थे, हम मटेरियल थे ना पहले, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे ना पेट में, क्या थे ये कार्बन हाइड्रोजन थे ना, हम एक पत्थर की तरह थे। अल्लाह जब तुम मुर्दा थे तो मैंने तुम्हें जिंदा करा, हम माँ के शिकम में पहले से मटेरियल थे, बाद में रूह आई। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें मुर्दा से पहले जिंदा करा है। वो कौन तुम अम्मा, तुम मुर्दा थे, फाया को मैंने जिंदगी दी, अभी तुम जिंदा फिर मर जाओगे, तुम फिर मैं तुम्हें फिर जिंदा करूंगा, फिर तुम मेरी तरफ लौट के भी आओगे ताकि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। कह बात है माफिल अर्द जमिया सुमस्तवा इला समाय फसल्ला उन्ना वो हुआ भी कुल्ले शाइन अलीम। दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हमदिन वाले। ये आज की आखिरी आयत है, खुदा ने फिर समझाया मैं कौन हूँ। तो ही समझ ले रमजान में आ, हुआ लजी खलक माफिल अर्द जमिया, वही तो है जिसने जमीन के अंदर जितनी चीजें सब तुम्हारे लिए पैदा करी हैं। सुमस्तवा इला समाय, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो ठीक सात आसमान बना लिए, ठीक साथ आसमान वाले। वो हुआ भी कुल्ले शाहीन अली, वो हर चीज से वाकिफ है। ये तुम्हारा परवरदिगार है, इसकी इबादत करो। जो कुछ जमीन में खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, बाकी कुरान ने ये भी कहा कि आसमान भी तुम्हारे लिए, जमीन भी तुम्हारे लिए, बाकी कुरान में ये भी जिक्र है। लेकिन इस वक्त खुदा बंदे आलम जमीन की बात कर, जमीन की हर चीज तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। ये ना हम लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, जमीन की बहुत सी चीजें हमको समझ में नहीं आती कि ये क्या के लिए। आप एक्सपर्ट से बोले, एक्सपर्ट बोलेगा अरे भाई तुमको ये नहीं मालूम इसमें क्या क्या है। हमारे लिए अगर हम जाहिल हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या क्या बना हुआ है। एक्सपर्ट बुला लें, हम जियोलॉजिस्ट को या बॉटनिस्ट को या जुअलॉजिस्ट को या मीटरोलॉजिस्ट को, वो बोले भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ये हमारी जहालत है। हम सोचते क्या है, तो बस ये बंजर चीज खड़ी हुई है, ये हमारी जहालत है। अल्लाह ने कहा इस सब चीज मैंने तुम्हारे लिए बनाई, मतलब जमीन की हर चीज एक हिकमत रखती है। जो खुदा ने कहा हर चीज मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, हर चीज में हिकमत है। सुमस्तवा इला समाय, फिर उस अर्श आसमान तरफ मुतवज्जो तो ठीक सात आसमान बना है। वो हुआ भी कुल्ले शैन अलीम, हर चीज पे को जानता है। सात आसमान अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाए, उसमें जो सबसे नीचे जो आसमान है वो गैलेक्सीज का है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में कहा कि सबसे नीचे आसमान को हमने सितारों से जीनत दी। ये जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसके बारे में थोड़ा इल्म है, ये सबसे नीचे वाला आसमान है। बाकी छह आसमान को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी चली आ रही है, सब सितारे हैं, सितारों पर सितारे, ये सबसे नीचे आसमान, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये अल्लाह, इसलिए हम अल्लाह को सजदा करते हैं। ये तो वही है खुदा बंदे करीम को हम इसलिए सजदा करते हैं कि वो ये खुदा बंदे करीम ने जमीन की हर चीज हमारे लिए बनाई। अब ये जमीन की हर चीज खुदा ने हमारे लिए बनाई, खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा चाहता है हम उसके हो जाए, खुदा चाहता है हम उसके हो जाए, हम जान और माल से अपनी कुर्बानी दे दें उसके लिए। इसलिए हम इमाम हुसैन की मजलिस करते हैं। इमाम हुसैन ने बताया कि अब्द वो होता है जो कि उरूज को पहुंचे कुर्बानी देकर। अब वो होता है कि जब अल्लाह ने सब उसके लिए बनाया तो अब तो खुदा का बन जाए। इसलिए इमाम हुसैन की मजलिस बरपा करते हैं ताकि इमाम हुसैन को याद करें और समझें कि अब तो होता क्या है। अब्दियत किसको कहते हैं, अब्दियत किसको कहते हैं? अभी मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने कि जो लोग रिश्तों को कता कर देते हैं। ये जो करबला हुई थी इसलिए हुई थी कि امت نے رشتوں کو منقطع کر دیا تھا. رسول اکرم نے کہا تھا میں کتاب اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس عطرت جو میری جو عطرت ہے اس سے اپنا کو منقطع نہ کرنا. ہائے امت نے منقطع کر دیا, اور منقطع ہو کے ہوا یہ کہ قرآن کی تفسیر غلط کرنے لگے. بہک اس لیے گئے, اگر رشتوں کو منقطع نہ کرتے, اہل بیت کو نہ چھوڑتے, تو قرآن کو صحیح سمجھتے, قرآن کی حکمت کو صحیح سمجھتے, شریعت کو صحیح سمجھتے. سمجھ میں آتا, ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ یزید جو ہے یہ ہمارا حاکم نہیں ہے بلکہ فاسق ہے. جب اہل بیت کو آپ چھوڑ دو گے تو فاسق آپ کو حاکم دکھنے لگیں گے. فاسقین جو کہ زمین میں جو فساد کرتے ہیں, اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یزید فاسق تھا, وہ فاسق اس لیے بنا کہ اس نے جو اللہ نے جو رشتے مانگے تھے, جن کو رکھنے کا حکم دیا تھا, اس نے منقطع خود بھی کرا اور امت سے بھی کرایا. آئے ہائے, یہ جو مصیبت تھی, جو مصیبت جو تھی, جو امام حسین نے جو قربانی دی, یہ اس لیے دی کہ فاسقوں سے ان کی جنگ تھی. کربلا میں آپ دیکھیں کہ رشتوں کی اہمیت, جو کربلا نے جو درس دیا رشتوں کا, اللہ نے کہا کہ رشتے قائم رکھو. بھائی کا بہن سے رشتہ, چچا کا بھتیجے سے رشتہ, ایک دو ماں باپ کا بیٹوں سے رشتہ. بی بی زینب کو دیکھیں جس طریقے سے ماں کا بیٹوں سے رشتہ ہوتا ہے, کربلا میں دیکھیں آپ یہ سارے رشتے. دوستوں کا رشتہ جس طرح سے کہ اصحاب اور دوست امام حسین کے ساتھ آئے, یہ سارے رشتے آپ دیکھ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رشتوں کو آپ قطع نہ کریں. ایک آخری جو میں مثال دوں گا رشتوں کی, وہ رشتوں کی مثال ہے عبداللہ کی. یہ عبداللہ کون تھے؟ یہ عبداللہ تھے امام حسن کے چھوٹے صاحبزادے. یہ رشتوں کی مثال ہے چچا اور بھتیجے کی. ارے چچا نے کتنی شفقت دی ہوگی امام حسین نے کہ عبداللہ جو 11 برس کے تھے انہوں نے چچا سے کیسی محبت کری کہ آخری وقت ہے اور امام حسین سجدے میں ہے اور شمر چاہتا ہے کہ ذبح کر دے عبداللہ 11 برس کے خیمے میں. ارے حضور رکا نہ گیا چچا کے لیے بھاگتے بھائی, امام حسین نے کہا بیٹا اندر چلے جا عبداللہ, اور عبداللہ نے آ کے جب ظالم نے تلوار چلائی تو عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھ دیے.